हाँ, तो अपना ये प्रसंग चल रहा था कि शक्यता अवच्छेदक जो है ना ज्यादा हो जाते हैं व्यापार अर्थ मानने पर, इसीलिए कृतित्व को शक्यता अवच्छेदक मान लेना चाहिए, ऐसा प्रतिपक्षी ने कहा। उस पर व्याकरणों ने जो है ना काउंटर किया कि कृतित्व अगर शक्यता अवच्छेदक मानेंगे धातु का, तो फिर अचेतन के लिए जहाँ पर गच्छति जानाति का प्रयोग होता है, जैसे रथो गच्छति घटो जानाति, ये प्रयोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रथ में वह कृतित्व तो रहेगा ही नहीं रहेगा। तो इस पर न्यायिकों ने एक जो है ना समाधान दिया था कि ऐसी जगह पर जहाँ पर अचेतनों के लिए प्रयुक्त होता है, वहाँ पर हम शक्ति को छोड़ करके लक्षणा के द्वारा व्यापार आदि अर्थ ले आएंगे और इस तरह से व्यवहार होने लगेगा। तो इस पर व्याकरण जो है ना कर इसका खंडन करने के लिए व्याकरणों ने ये बताया कि ऐसा है कि न्यायिकों की रीति में दोनों चीज़ें माननी पड़ती है, शक्ति भी माननी पड़ती है और लक्षणा भी माननी पड़ती है। तो जहाँ चेतन है वहाँ पर शक्ति से अर्थ लेंगे कृति, और जहाँ पर अचेतन है वहाँ पर लक्षणा से अर्थ लेंगे व्यापार। तो शक्ति से जब अर्थ लेंगे तो शक्यता अवच्छेदक कृतित्व होगा, और लक्षणा से अर्थ लेंगे तो लक्षता अवच्छेदक जो है वह व्यापारत्व होगा। इसको मैं उदाहरण पर समझाने जा रहा था कि टाइम हो गया था, अब इसको उदाहरण में समझिए। जैसे गंगायाम घोषा है, तो गंगा नाम है जल प्रवाह का, जल की धारा का, उसमें घोषा माने घर, अहीर जाति जो होती है ना यादव जाति, उनका जो घर होता है जिस घर में गौशालाएँ सब रहती हैं माने गायें रहती हैं, उनके घर को घोष कहा जाता, अहीरों के घर को माने घोष कहा जाता। तो अब गंगा जो जल प्रवाह है उसमें तो घोष संभव नहीं है, जबकि गंगायाम घोषा का शक्ति के द्वारा यही अर्थ निकलेगा कि गंगा में घर, जल प्रवाह में रहने वाला घर, जो कि संभव नहीं है। तो वहाँ पर लक्षणा का सहारा लेते हैं, लक्षणा से गंगा का अर्थ करते हैं गंगायाह तटे, तो अब अर्थ बैठ जाता है, अन्वय बैठ जाता है कि गंगा के तट पर घोष है। तो वहाँ पर देखिए लक्षणा के द्वारा, शक्ति के द्वारा गंगा का अर्थ क्या निकलता है, जल प्रवाह, और लक्षणा के द्वारा क्या अर्थ निकलता है गंगा का, गंगा तट। ठीक है, तो लक्षणा के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे लक्ष्य कहते हैं, जैसे शक्ति के द्वारा जिसका अर्थ निकलता है, जो अर्थ निकलता है उसको शक्य कहते हैं। तो लक्षणा के द्वारा जो अर्थ निकला वो हो गया लक्ष्य, लक्ष्य में कौन सा धर्म रहेगा, लक्ष्यता धर्म रहेगा, और एक लक्ष्यता को दूसरी लक्ष्यता से अलग करने वाला जो धर्म होगा उसको कहेंगे लक्ष्यता वच्छेदक। अब जैसे गंगायाम घोषा में गंगा का लक्ष्य क्या है, गंगा तट, लक्ष्यता किस में रहेगी, गंगा तट में रहेगी, लक्ष्यता वच्छेदक क्या होगा, गंगा तटत्व, समझ में आया लक्ष्यता वच्छेदक। ऐसे ही जब रथो गच्छति या रथो जानाति में गम धातु का अर्थ जो है हम करेंगे लक्षणा के द्वारा व्यापार, तो लक्ष्य अर्थ क्या हुआ, व्यापार, लक्ष्यता किस में रहेगी, व्यापार में, लक्ष्यता अवच्छेदक कौन होगा, व्यापारत्व होगा। तो न्यायिकों की रीति में क्या है, उनको शक्ति भी माननी पड़ेगी चेतन के लिए, और जहाँ अचेतन है उसके लिए लक्षणा माननी पड़ेगी। ऐसा इतना ही नहीं है, उनको शक्यता अवच्छेदक भी मानना पड़ेगा चेतन वाले के लिए, और अचेतन वाले के लिए लक्षता अवच्छेदक भी मानना पड़ेगा। तो उनको दो दो मानने की जरूरत पड़ गई, तो उनको ज्यादा गौरव हुआ ना, हमें तो केवल शक्यता अवच्छेदक ही मानना पड़ा। तो यही व्याकरण खंडन में कहते हैं कि शक्यता अवच्छेदकत्वस्यापि लक्षता अवच्छेदकत्ववद गुरुनि संभवाद, कहा कि न्यायिकों के मत में क्या होता है कि लक्ष्यता अवच्छेदक जो है ज्यादा मानना पड़ता है, और हमारे मत में शक्यता अवच्छेदक से ही काम चल रहा है। कहेंगे कि आपका जो शक्यता अवच्छेदक है वह तो अनेक है, तो वैयाकरण कहते हैं कि आपका लक्ष्यता अवच्छेदक भी तो अनेक होगा, जहाँ पर गच्छति रहेगा वहाँ पर गमन गमनानुकूल व्यापार व्यापारत्व, ऐसा लक्ष्यता अवच्छेद होगा, जानाति रहेगा तो ज्ञानानुकूल व्यापारत्व, इस तरह से कई तरह का व्यापारत्व व्यापारत्व जो है आपका लक्ष्यता अवच्छेदक होगा। तो जब आप लक्ष्यता अवच्छेदक अनेक होने का गौरव झेल लेते हैं, तो हम भी शक्यता अवच्छेदक अनेक होने का गौरव झेल लेंगे। इसीलिए आप ये मत मुझे पढ़ाइए कि आप आपके व्यापार अर्थ मानने पर सकता व छेदक में गौरव होता है, इसीलिए कृतित्व अर्थ मान लेना चाहिए लाघव के आधार पर। ये मुझे मत सिखाइए, क्योंकि गौरव आप में भी है, गौरव हम में भी है। तो वही कहा आगे, तयोर वैषम्य बीजा भावार। ये आप नहीं कह सकते कि लक्षता अवच्छेदक में गौरव है तो चलेगा, लेकिन सकता अवच्छेदक में गौरव है तो नहीं चलेगा। इस तरह से वैषम्य, इस तरह से विषम व्याख्यान अगर आप करते हैं तो बीज अभावात, बीज का मतलब यहाँ पर है प्रमाण, तो इसमें प्रमाण का अभाव है। जैसे लक्षता अवच्छेदक में गौरव होता है, वैसे ही सकता अवच्छेदक में भी गौरव होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि न च पचति पाकम करोति इति यत्नार्थक करोति ना विवरणात् यत्न एव आख्यातार्थ इति वाच्यम्। पीछे के प्रसंग में आया था कि विवरण और विव्रियमाण में अभेद होता है। विवरण माने अर्थ विवरण, और जिसका अर्थ विवरण किया जाता है उसे हम विव्रियमाण कहते हैं। तो यहाँ पर भी पचति जो है विव्रियमाण है, और उसका अर्थ विवरण होता है पाकम करोति। पाकम करोति माने पाकाय यत्नम करोति, पाक के लिए यत्न करता है। तो यहाँ पर जो क्री धातु है उसका यत्न अर्थ है, पाकम करोति माने पाक के लिए यत्न करता है। इस तरह से पचत का अर्थ बताया जाता है। तो इस अर्थ विवरण में यत्नार्थक करोति ना विवरणात्, यत्न अर्थ वाले क्री धातु का जो है ना विवरण दिखाई देता है। तो इस आधार पर यत्न एव आख्यातार्थ इति वाच्यम्, यत्न को ही जो है आख्यात का अर्थ मान लेना चाहिए, प्रत्यय का अर्थ मन तिंग का अर्थ मानना चाहिए, क्योंकि विवरण में यत्न अर्थ आता है, इसीलिए आख्यात का अर्थ यत्न मानना चाहिए। इस तरह से एक नया सवाल जो है पूछा गया। इसका खंडन करते हैं व्याकरण, कहते हैं कि नहीं, ये भी अर्थ यहाँ आख्यात का भी अर्थ जो है यत्न नहीं माना जा सकता। कैसे? तो रथो गमनम करोति, रथ गमन करता है, बीज आदि ना अंकुरा कृतः, बीज आदि के द्वारा अंकुर जो है जन्माया जाता है। इस तरह इति दर्शनात्, इस तरह का प्रयोग देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर करोति और कृता में क्री धातु का अगर यत्न अर्थ, ये करोति में तिंग का अर्थ और क्री धातु ही कहना होगा, करोति में जो क्री धातु है और कृतह में जो क्री धातु है, इनका अगर अर्थ हम यत्न मानेंगे तो वह सिद्ध नहीं हो, यत्न अर्थ यहाँ पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि रथ जो है वह अचेतन है, बीज आदि जो है वह अचेतन है, उसमें यत्न कैसे रहेगा। तो यदि हम क्री धातु का अर्थ यत्न मान लेंगे तो रथो गमनम करोति इस तरह से प्रयोग नहीं हो पाएगा, बीज आदि ना अंकुरा कृतः इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा। जहाँ तक आख्यात अर्थ की बात है कि तिंग का अर्थ मान लीजिए, तो तिंग का भी अर्थ माना नहीं जा सकता, क्योंकि तो करोति में तिंग है लेकिन कृतह में तो तिंग नहीं है ना, यहाँ तो अक्तौ प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। तो अगर हम तिंग का अर्थ यत्न मानेंगे तो बीजादिना अंकुर कृतह में जो अक्तौ प्रत्यय है उसका अर्थ तो यत्न नहीं निकलेगा। तो आप कहेंगे कि धातु का अर्थ मान लेते हैं, क्योंकि करोति में भी क्री धातु है और कृतह में भी क्री धातु है, तो वो भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो ये निर्जीव है रथ और बीज आदि, उसके साथ जो है रथो गमनम करोति बीजादि ना अंकुरा कृतः इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा। वही कहा कि इति दर्शनात्, माने व्यवहार में इस तरह का दर्शन होता है, प्रयोग दर्शन, इसलिए क्रिया यत्नार्थकताया सिद्धे, क्री धातु का यत्न अर्थ मान लेना जो है वो असिद्ध है, वह संभव नहीं है। इस तरह से इन्होंने खंडन किया। अब फिर अगला खंडन बताते हैं किंच। ये दोबारा जब खंडन करना होता है, तिवारा खंडन करना होता है, तो किंच से जो है हम उस खंडन की शुरुआत करते हैं। तो अब देखो दूसरा खंडन क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि किंच भावनाया अवाच्यत्व, ताकि भावना में अगर अवाच्यत्व होगा, अर्थात धातु का अर्थ यदि भावना नहीं मानेंगे, व्यापार नहीं मानेंगे, तो घटम भावयति इत्यत्र इव। तो कहा कि घटम भावयति माने घड़ा को बनाता है, जैसा अर्थ घटम भावयति का होता है उसी तरह से घटो भवति इत्यत्रापि, यहाँ पर भी वैसा ही अर्थ निकलने लगेगा। फिर द्वितीया स्यात्, फिर जो है जैसे घटम भावयति में भावयति का अर्थ होता है वहाँ पर उत्पादयति, ठीक है, तो घटम भावयति में घटम में द्वितीया हुई है ना, उसी तरह से घटो भवति में भी जो है द्वितीया होने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो है भू धातु का अर्थ क्या मान रहे हैं, यत्न अर्थ मान रहे हैं, धातु का अर्थ आप यत्न ही मानते हैं, तो भावयति में भी भू धातु है और भवति में भी भू धातु है, तो जब भू तो वहाँ भी यत्न अर्थ होगा, यहाँ भी यत्न अर्थ होगा, तो जैसे घटम भावयति में घट में द्वितीया हो जाती है, उसी तरह से घटो भवति में भी जो है द्वितीया होने लगेगी। इस तरह से इन्होंने आपत्ति दिया, ताकि किंच भावनाया अवाच्यत्वे, भावना अर्थ अगर नहीं मानेंगे, केवल जो है कृति अर्थ मानेंगे, तो घटम भावयति की तरह घटो भवति में भी द्वितीया की आपत्ति होने लगेगी। अब अगर इस पर काउंटर कोई करे, माने प्रतिपक्षी अगर ये कहे कि नहीं जी, घटो भवति में द्वितीया की आपत्ति नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घटो भवति में दोनों की प्राप्ति होगी, कर्त्री संज्ञा की भी प्राप्ति होगी घटह में और कर्म संज्ञा की भी प्राप्ति होगी, लेकिन परत्वात् विप्रतिषेधे परम कार्यम, जो पर हो कार्य पर होता है वही कार्य किया जाता है, तो कर्त्री संज्ञा जो है वह पर संज्ञा है, तो पर संज्ञा जो है ना पूर्व संज्ञा को कर्म संज्ञा को बाध करके हो जाएगी, तो घटो भवति ही रूप बनेगा, घटम भवति रूप नहीं बनेगा। इस तरह से अगर कोई प्रतिपक्षी कहता है तो उसके लिए खंडन करते हुए कहते हैं, न च अत्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्संज्ञया कर्म संज्ञाया बाधात् न द्वितीया इति वाच्यम्। जहाँ भी न च वाच्यम हो न, तो शुरू वाला न च को वाच्यम में लगा देना चाहिए, माने इति न वाच्यम, इस तरह का समाधान आप नहीं कर सकते कि घटस्य कर्तृत्व न, माने घट में कर्तृत्व रहता है, इसलिए कर्तृ संज्ञा के द्वारा कर्म संज्ञा का पूर्व संज्ञा का बाध हो जाएगा, इस तरह इसलिए द्वितीया नहीं होगी, इति न वाच्यम, इस तरह से आप समाधान नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा समाधान आप कब बता पाएंगे, जब आप ये फाइनल कर लें कि कर्तृत्व क्या होता है और कर्मत्व क्या होता है, ये जब आप फाइनल करके हमें बताएंगे तभी आप समाधान दे सकते हैं कि घट में कर्तृत्व रहता है और उस कर्तृत्व के द्वारा कर्मत्व का बाध होता है, लेकिन आपके सिद्धांत में आपके मत में कर्तृत्व का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्या कर्तृत्व होता है, कर्ता कौन होता है, यही जो है आपका इसके सिद्धांत में क्लियर नहीं है, इसलिए आप इस तरह का समाधान नहीं कर सकते। वही चीज कह रहे हैं कि अनुगत कर्तृत्वस्य, अनुगत माने निश्चित, निश्चित जो कर्तृत्व है त्वन मते दुर्वचत्व है ना, तुम्हारे मत से माने न्यायिकों के मत से वह दुर्वच है, माने उसको बताया नहीं जा सकता है, इसीलिए घटस्य अकर्तृत्वात्, और जब आप बता ही नहीं सकते कि कर्तृत्व क्या है तो कैसे आप कहेंगे कि घट में कर्तृत्व रहता है, इसलिए घटस्य अकर्तृत्वात्, तो घट में अकर्तृत्व रहेगा और अकर्तृत्व रहेगा तो फिर कर्म संज्ञा होने से जैसे घटम भावयति में द्वितीया होती है उसी तरह से घटो भवति में भी घटम भवति होने लगेगा। फिर न्यायिकों को गुस्सा आया, कहा कि अच्छा मैं कर्तृत्व को अनुगत करते तो नहीं बता सकता क्या, देखो मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दो बताता हूँ, कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम, कि जो कृति का आश्रय हो वह कर्ता कहलाता है, अथवा कृति का आश्रयत्व जो है उसी को हम कर्तृत्व कहते हैं, इस तरह से हम कर्तृत्व को अनुगत कर सकते हैं। कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ता जो है दोनों प्रकार का होता है, चेतन भी होता है और अचेतन भी होता है, तो कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम कहेंगे तो ये चेतन में तो लागू हो जाएगा, कृति का आश्रय माने, कृति माने यत्न, बताया था ना कि यत्न का आश्रय जो है वह चेतन तो हो जाएगा, अचेतन तो होगा नहीं, तो अगर ये लक्षण करेंगे कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम तो ये लक्षण चेतन में ही केवल जाएगा, अचेतन में नहीं जाएगा तो व्यभिचार हो जाएगा, माने यह लक्षण जो है सफल नहीं माना जाएगा। तो फिर कहा कि दूसरा लक्षण बताया न्यायिकों ने, कहा कि कारक चक्र प्रयुक्तृत्वम कर्तृत्वम, कि कारक का जो चक्र है, चक्र मतलब समूह, कारकों का जो समूह है उसका जो प्रयोक्ता हो, माने उस समूह को जो हैंडल करने वाला हो, नियंत्रण करने वाला हो, वह कर्ता होता है, कहा कि ये लक्षण करेंगे और ये लक्षण सब में लागू हो जाएगा। कहा कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी जो है ना कारक चक्र प्रयुक्तित्वम, ये नियंत्रकत्व जो है, नियंत्रण करने का जो धर्म है, वह भी केवल चेतन में ही रहने वाला धर्म है, अचेतन जो घट आदि है उसमें ये रहने वाला धर्म नहीं है। तो आप कृत्याश्रयत्वम कर्तृत्वम लक्षण करेंगे, वो भी अनुगत कर्तृत्व नहीं है। कारक चक्र प्रयुक्तित्वम कर्तृत्वम कहेंगे तो वो भी अनुगत कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि वह घटादो अभाव, घटादि में इस लक्षण का अभाव है। कहा कि अच्छा चलिए फिर अगर ये दोनों, तो एक तीसरा लक्षण मैं बताता हूँ कर्तृत्व के लिए, धात्वर्थानुकूल व्यापाराश्रयत्वम कर्तृत्वम, ऐसा हम लक्षण करेंगे कि कर्तृत्व क्या होता है। तो धात्वर्थ जो फल है उसके अनुकूल, माने जनक जो व्यापार, माने धात्वर्थ फल जनक जो व्यापार, उस व्यापार का जो आश्रयत्व जो है वही कर्तृत्व है, अथवा उस व्यापार का जो आश्रय है वही कर्ता है, ऐसा हम लक्षण करेंगे। कहा कि अच्छा अगर ये लक्षण करेंगे तो और भी गड़बड़ होगा। फिर कारक मात्र अतिव्यापकत्वात्, कारक मात्र माने सभी कारकों में ये लक्षण चला जाएगा, क्योंकि जितने भी कारक होते हैं सबके सब कारक जो हैं फल जनक व्यापार के आश्रय हुआ करते हैं, क्योंकि एक भी कारक नहीं रहेगा तो फल जनक व्यापार हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर आपने कहा कि धात्वर्थानुकूल व्यापार आश्रयत्वम कर्तृत्वम, माने धात्वर्थ का अर्थ यहाँ पर फल लेना है, तो धात्वर्थ फल के अनुकूल जो व्यापार, माने जनक जो व्यापार, उस व्यापार का जो आश्रय है वह करता है, ऐसा अगर कहेंगे तो कारक मात्र अतिव्यापकत्वात्, तो कारक मात्र में अतिव्याप्ति हो जाएगी, सभी कारकों में कर्तृत्व जाने लगेगा। इस तरह से जो व्याकरणों ने कहा था कि आपके मत में, आपके सिद्धांत में अनुगत कर्तृत्व कोई है ही नहीं, और इसलिए जो है आप ये बात नहीं कह सकते कि घट में कर्तृत्व है और उस कर्तृत्व से कर्मत्व का बाध हो जाएगा, ये बात आप नहीं कह सकते। उस चीज को यहाँ पर प्रमाणित करके व्याकरणों ने दिखा दिया, न्यायिकों ने तीन तरह के लक्षण बोले, तीनों लक्षणों में व्याकरणों ने दोष दिखा दिया। फिर कहते हैं कि अपिच, अपिच से अब तीसरा खंडन भी करते हैं, दो खंडन तो पहले कर दिया, तीसरा खंडन कहते हैं कि भावनाया अवाच्यत्वे, अब इस खंडन को ना हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज का पाठ यहीं रखते हैं।